ओम शांति। ये मुरली 18 जनवरी 1996। आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है सच्चे है, तो कैसी भी हालत में बाप दादा क्या खिलाएगा? दाल रोटी जरूर खिलाएगा, और क्या नहीं खिलाएगा? चावल, दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो क्या निश्चय है? आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है सच्चे है, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। किनको खिलाएगा? जो निश्चय बुद्धि है, जिनको यह निश्चय है कि साथ कौन है? स्वयं भगवान। जो बाप के साथी है, और दूसरी कंडीशन जिनमें सच्चाई है, जिनका हृदय स्वच्छ है, सच्चा है, तो कैसी भी हालत में कैसी भी विकराल परिस्थिति हो, उसमें बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन फिर क्या नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी। हृदय में अगर थोड़ा भी झूठ है, हृदय में अगर थोड़ी भी अपवित्रता है, तो भगवान की मदद वहां रुक जाती है, नहीं मिलती है। मदद उनको मिलती है जिनका हृदय सच्चा है, साफ है। और भगवान जो है वो हमारी जो भी जरूरत है उसको पूरा करता है। किसको नहीं पूरा करता है? जो मांग है, मांग को पूरा नहीं करता। अनावश्यक मांग, जो जरूरत है उसको पूरा करता है हमेशा। तो दाल रोटी का अर्थ क्या है यहाँ पर? केवल दाल रोटी नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है केवल, परंतु योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त गीता में क्या लिखा है, संपूर्ण रीति से मेरे परायण है, उनका सब कुछ मैं करता हूँ, उनके जीवन का पालन भरण पोषण सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। परंतु किनका? जो संपूर्ण रीति से मेरे प्रति समर्पित है। मन मना भव मध्याची भक्ता माम नमस्करु। जो इस तरह मुझ में मन लगाए हुए है, उनका सब कुछ मैं करता हूं। तो एक तो साथ, और दूसरा सच्चाई। सच्चाई को अपने अंदर धारण करना है। जितना हमारा हृदय साफ और स्वच्छ और सच्चाई होता जाएगा और सच्चाई से भरता जाएगा, परमात्मा मदद, ईश्वरीय कृपा दया आशीर्वाद जो भी कहो, स्वतः ही होने लगेगी। स्वतः ही जीवन में ऐसी चीजें होने लगेगी जो हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ा रहा है। हम कुछ कर नहीं रहे, स्वतः ही आगे बढ़ रहा है। परिस्थितियां निर्माण हो रही है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है जिससे पुरुषार्थ तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा है। निर्मल मन सो मोहि पावा, जिसका हृदय निर्मल है वो मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामचरितमानस में है कि मुझे कपट, जिस हृदय में कपट है, छल है, छिद्र है, छिद्र अर्थात दूसरों के दोष देखना, छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के दोष देखना, जो हृदय में ये तीनों ही बातें नहीं है, कपट नहीं है जहां पर, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, वहां पर मैं हूं, अन्यथा मैं नहीं हूं, अन्यथा मेरी मदद नहीं है, ऐसी आत्माओं को मैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता जिनमें ये अवगुण है। निर्मल मन, जिसका हृदय निर्मल है, चित्त शुद्ध है, चित्त की दशा, चित्त के भाव, चित्त दशा जहां शुद्ध हो गई है, झूठ जहां समाप्त हो गया है, वहां पर भगवान की मदद है। जीवन में जो कुछ आवश्यक है वो सब कुछ उसकी आपूर्ति होगी स्वतः ही। तो दाल रोटी केवल खाने की बात नहीं है यहाँ पर, परंतु संपूर्ण जीवन की बात है। तो जो बाप के साथी है, जिन्होंने भगवान को साथी बनाया है, जीवन के कदम कदम पर पल पल उसके साथ का अनुभव होना हर परिस्थिति में, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हृदय को अहोभाव, कृतज्ञता के भाव से भर देना, धन्यवाद के भाव से भर देना, जो भोजन हमको मिल रहा है उसके प्रति भी अनुग्रह, धन्यवाद, शुक्रिया, एहसान मंद, ये सब भाव हमारे अंदर भरे हुए हो। दो प्रकार के भोजन हैं, एक है हिंसक भोजन, एक है अहिंसक भोजन। हिंसक भोजन किसको कहेंगे और अहिंसक भोजन किसको कहेंगे? केवल मांसाहार, केवल शाकाहार की बात नहीं है। जिस चित्त में क्रोध भरा है और क्रोध की मनोदशा में, चित्त की दशा में जो भोजन स्वीकार किया जा रहा है, वह सभी भोजन हिंसक भोजन है। क्रोध, निगेटिविटी, इस तरह के भाव हृदय में भरे हुए हैं और उस अवस्था में भोजन को स्वीकार किया जा रहा है, वो सभी हिंसक की श्रेणी में आते हैं, हिंसक भोजन। अहिंसक भोजन, उसमें तीन तल है, एक तो शरीर का तल, मन का तल, चित्त का तल, और तीसरा आत्मा का तल। शरीर के तल पर अहिंसक भोजन उसे कहा जाता है जो संपूर्ण अनुत्तेजनाजनक है, उत्तेजना नहीं है उसमें, सादा है वो। जितनी उसमें उत्तेजना होगी उतने ही हिंसक भाव मन में प्रकट होंगे। सबसे बड़ी हिंसा काम, जितना ही वो उसमें जितना कुछ भरो एक्स्ट्रा जो प्रकृति ने दिया है उसके अलावा, वो सभी हिंसक भाव पैदा करेंगे। तो शरीर के तल पर भोजन वह जो कि स्वास्थ्यपूर्ण हो, जो कि अनुत्तेजनाजनक हो, ये शरीर के तल पर ऐसा जो भोजन है वो अहिंसक भोजन है। चित्त के तल पर वह भोजन जो प्रसन्न मन से स्वीकार किया जाता है, वह भोजन जो प्रसाद पूर्ण भाव से स्वीकार किया जाता है, वह भोजन जो कि ऐसा लगे कि ये जैसे भोग है, उस श्रेष्ठतम भाव से जो भोजन स्वीकार किया जाता है, जो सम्यक भोजन जिसको कहते हैं, जिस भोजन में हड़बड़ी नहीं है, फटाफट फटाफट खा लिया और पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है, शांत चित्त है, प्रसन्न मन है, इस चित्त की दशा में जो भोजन किया जाता है वह अहिंसक भोजन है। और आत्मा के तल पर कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, शुक्रिया, एहसान मंद है, शुक्रगुजार है, उसका शुक्राना मानकर भोजन स्वीकार कर रहे हैं। केवल भोजन के प्रति ही शुक्रिया नहीं, हर चीज के प्रति, सृष्टि के प्रति, नया जीवन दिया है उसके प्रति शुक्रिया, धन्यवाद, फिर से नई सुबह, फिर से नया अमृत वेला मिला, नहीं तो आज हम कब्र में होते रातों रात। जीवन अनिश्चित है, परंतु फिर भी हमें जीवन मिला, अवसर मिला, जो गलती अब तक की थी उसको सुधारने का फिर एक अवसर मिला, फिर एक मौका मिला, फिर एक चांस मिला, उसके लिए धन्यवाद। नई सुबह मिली, नया अमृत वेला मिला, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग मिला, मधुबन की इस पावन भूमि पर आज इस सुबह हम यहाँ बैठे हैं, कितना बड़ा भाग्य है ये। ऐसी सभा, श्रेष्ठतम सभा है संसार की, महानतम आत्माओं की। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग मिल जाना, महान आत्माओं का संग मिल जाना, मधुबन की यह पावन भूमि मिल जाना, परमात्मा अवतरण भूमि में इस समय, इस सुबह, फिर से सूरज, फिर से वही चांद, हृदय को कृतज्ञता से भर देना। एटीट्यूड शुड बी ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड हमारा कैसा हो, वृत्ति हमारी ग्रेटिट्यूड की हो, हर बात के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए शुक्रिया उसको कि उसने ये सब कुछ दे दिया हमें, फिर से एक नया जीवन, फिर से नया दिन दिया है पूरा ही, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जा सकता है, अब तक की हुई भूले फिर से ठीक की जा सकती है। तो हृदय को अहोभाव से भर देना, ग्रेटिट्यूड से भर देना, धन्यवाद से भर देना, यह है आत्मा के तल पर इस दशा में जो भोजन स्वीकार किया जाता है वह अहिंसक भोजन है। इसके विरोध में जो कुछ है वो हिंसक है। यहाँ भोजन चाहे कितना भी भोग लगाया हुआ हो, कितनी ही पवित्र आत्माओं ने तैयार किया हुआ हो, परंतु स्वीकार करते समय हमारे मन में अकृतज्ञता, इनग्रेटफुल है हम, भाव जो है वो क्रोध का है, दोषपूर्ण वृत्ति है, ये क्यों है, वो क्यों है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, इसमें नमक कम है, ये टेस्टी नहीं है, इस प्रकार से भाव है। तो वो भी, वो जो मांसाहार होता है वो मांस को जलाता है, क्रोध भी मांस को जलाता है अंदर। तो वो भोजन भी अहिंसक भोजन नहीं कहा जाएगा जो इस चित्त की दशा में लिया जाता है। किस मनोदशा में भोजन स्वीकार कर रहे हैं, धन्यवाद से भरा हुआ हो चित्त, आनंद पूर्ण दशा हो, प्रेम पूर्ण स्थिति हो मन की, प्रसाद किस तरह स्वीकार करते हैं भक्त, नीचे गिर जाता है उसको उठा के खाते हैं, वो भाव हो कि ये यज्ञ का भोजन है, उतना ही लिया जाए जितना जरूरी है, बहुत सारा ले लो और फिर वैसे ही छोड़ दो, बोझ है बहुत बड़ा। कटोरी में छुपा के एक दिन का भोजन की कॉस्ट निकालो कितनी होगी, सुबह से लेकर रात तक मधुबन में जो मिल रहा है, केवल कॉस्ट, उसकी क्वालिटी तो छोड़ दो, मैं केवल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। पूरे दिन भर का, सुबह का नाश्ता से लेकर चाय से लेकर, तो जो भी कुछ दिन भर में मिल रहा है टोली से लेके, सब कुछ एक कॉस्ट निकालो, इतना है केवल कॉस्ट, आर्थिक रीति से केवल कह रहा हूँ, बाकी तो छोड़ दो, पवित्रता और वो सब बातें दूर, केवल उतना तो पता चलेगा। तो जो भोजन हम ले रहे हैं, इतना सा भी वेस्ट ना जाए हमसे, थोड़ा सा भी नहीं, इतना ही लो जितना हम खा सके, एक टुकड़ा भी वेस्ट न जाए। चाहे किसी ने कल कहा ना, बाबा ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है, जिसका यज्ञ है वो क्या देखेगा नहीं। He that planted the ear, shall he not hear? He that planted the eye, shall he not see? बाइबल में लिखा है, अरे जिसने आंख दी है तुमको क्या वही नहीं देखेगा, जिसने कान दिया है वही नहीं सुनेगा, वो सब कुछ सुनता है, द विस्परिंग्स ऑफ योर हार्ट, सब कुछ जो तुम्हारा हृदय गुनगुना रहा है, एक एक शब्द, एक एक भाव जो हृदय से प्रकट हो रहे हैं, उस तक पहुंच रहे हैं। चींटी के पैरों के घुंघरू की आवाज भी, पायलों की आवाज भी उस तक पहुंचती है। तो जो उसका यज्ञ है और उसके जो यज्ञ रक्षक है, जिसे उसने चुना है स्वयं, क्या उनके हृदय में जो भाव प्रकट हो रहे हैं, क्या वो नहीं जानेगा? सब कुछ जानेगा, सब कुछ देखेगा, कुछ भी करो उससे कुछ भी छिपा नहीं है। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किस भाव से हम खा रहे हैं, जो मिल रहा है कृतज्ञता से भर दो उसको, हृदय को उपकार क्या क्या उसने किए है वो सब चीजें याद करो, समान की स्थिति हो, प्रेम पूर्ण चित्त हो, प्रसाद पूर्ण भाव हो। जैसे कोई प्रार्थना कहता है तो कितनी शुद्धि होती है, कितना निस्तब्धता और निश्शब्दता होती है, और कोई आवाज नहीं होता है, केवल प्रार्थना हो रही है, हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं, और सीधा मन के रथ पर बैठकर परमात्मा के देश चल रहे हैं वो शब्द। ऐसी हमारी चित्त की दशा हो, ऐसी हमारी मनो मन की दशा हो, शांत चित्त हो, प्रेम पूर्ण भाव हो, उस भाव में भोजन को स्वीकार करो। तो जो बाप के साथी है, जो सच्चे है, तो ऐसे को किसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, दाल रोटी। पर ब्राह्मण केवल दाल रोटी से संतुष्ट नहीं होते, क्या चाहिए उनको? बहुत कुछ चाहिए। बाबा इतना तो जरूर देगा, तो उतनी खाने की भी आदत चाहिए। फिर जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, नहीं मिले तो भी संतुष्ट, मिल रहा है वही बड़ी बात है। संसार में जाके देखो संसार के लोगों को क्या खा रहे, क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे। पॉवर्टी का स्टेटिस्टिक्स निकालो पूरा, गरीबी का। देशों में जाओ, अफ्रीका के देशों में जाओ और कई सारे ऐसे गरीब देश है, वहां जाओ तो पता चलेगा। और यहाँ क्या क्या मिल रहा है, परंतु मिल रहा है इसके लिए उसकी कदर थोड़ी कम हो रही है, भूल रहा है। खाते समय भी श्रेष्ठ स्थिति हो मन की, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर खाना, ये एक योग का प्रयोग है। जो जो हम खा रहे, एक एक निवाला, एक एक कौर विश्व की सब आत्माओं तक पहुंच रही है। इधर खाया कल्प वृक्ष के नीचे मैं आत्मा बैठी हूं, और ये जो भोजन स्वीकार कर रहा हूं कहाँ जा रहा है? एक एक संसार की सभी आत्माओं तक जा रहा है। ये ब्रह्मा भोजन सबको प्राप्त हो रहा है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी भूख, उनकी श्रद्धा, जो ऐसे श्रद्धातुर है उनकी श्रद्धा प्यास शांत हो रही है। तो इस भाव में इस भोजन को स्वीकार करना। दूसरा मुरली, दूसरी मुरली है 3 अप्रैल 1996। डायमंड जुबली मना रहे हैं। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा आपका शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगा, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं। क्या दिलासा देते हैं? चिंता मत करो, फिकर नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। हमारा शिक्षक समय न बने। जो शिक्षाएं बाबा ने दी है वो तुरंत धारण करनी है। जिस दिन शिक्षा मिली, जिस दिन बुद्धि में प्रकाश आ गया, जिस दिन समझ में आ गई बात, उस दिन तुरंत उसको धारण कर लेना। चाहे सुन रहे कई समय से, परंतु जरूरी नहीं है कि वो समझ गई। जिस दिन समझ आ जाएगी, अचानक कुछ और ही घटित होगा हृदय में। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट इज अ डिफरेंट स्टेट, नॉलेज इज अ डिफरेंट स्टेट। एनलाइटमेंट हो जाना, अचानक से वो होती है दशा कि एक दिन कितने समय से एक ही पॉइंट सुन रहे, पर एक दिन अचानक वो समझ में आ जाती है, ऐसी है। तो समय का इंतजार नहीं करना है, जो कुछ कहा हुआ है अब तक तुरंत धारण करना है उसको। तो शिक्षक कौन है, बाप या समय? अगर समय आएगा और तब करेंगे, तब वैराग्य वृत्ति धारण करेंगे, तब पुरुषार्थ को तीव्र करने का प्रयत्न करेंगे, तो वो समय की बलिहारी होगी, हमारी नहीं। तो डायमंड जुबली हो रही है, 96 का साल है ये। तो बाबा कह रहे हैं डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। सेवा का उमंग तो बहुत है, सेवा करने के लिए तत्पर है, रेडी है, परंतु उतना ही वैराग्य वृत्ति भी हो। अगर कह दिया जाए सब कुछ रोक दो और बैठ जाओ और तपस्या करो, सब सेवा स्टॉप, तो फिर हलचल ना हो, तब बेचैनी ना हो, उसका भी प्रयास कि निरंतर वैराग्य वृत्ति हमारे हृदय में हो। समय पर होगा वो समय की बलिहारी है, हमारी बलिहारी नहीं। वो समय की विजय होगी, हमारी विजय नहीं। और तब हम जो करेंगे वो दिल से नहीं करेंगे, वो जबरदस्ती होगा, मजबूरी से होगा। तब जो वैराग्य दिलाएगा शायद हृदय में बहुत पीड़ा होगी उस समय। जिस चीज को हमने पकड़ रखा है, जिस व्यक्ति को अपना मान लिया है, जिस देह को समझा ये मेरी है, शायद अपनी या किसी और की, जो सोच रखा है कि ये देह मेरी है, जो सोच रखा है ये व्यक्ति मेरा है, जो सोच रखा है वैभव वस्तु, जो भी संसार की जो भी चीज है, समय जब हमसे वो छुड़ाएगा तब पीड़ा होगी, हृदय विदीर्ण होगा। इसके लिए उसके पहले ही उसका परित्याग कर दो, मन से, मेंटल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट। जिनमें बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, वह इमोशनल डिटैचमेंट उत्पन्न करनी है। ऊपर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब खेल अंदर का है, अदृश्य का खेल है, दिख कुछ नहीं रहा है, इनविजिबल, इट इज अ प्ले ऑफ इनविजिबल। तो समय, एक साधु था, वो एक नदी बहती थी, रोज उस नदी के पास आकर प्रतीक्षा करता था, उसे नदी के उस पार जाना था, पर सोचता था, इंतजार करता था, कभी ऐसे देखता था, कभी ऐसा देखता था, जो भी वहां से गुजरता था आश्चर्य होता था लोगों को कि ये जाता क्यों नहीं है वहां से। और एक व्यक्ति तो उसे रोज ही देखता था कि नदी तो बह रही है, परंतु ये व्यक्ति नाव भी है, जा सकता है उधर, परंतु ये किस लिए इंतजार कर रहा है। वो साधु कहता है कि मुझे उस तरफ जाना है, परंतु मैं इसका इंतजार कर रहा हूं कि ये जो नदी है थोड़ी रुक जाए तो मैं जाऊं, नदी का पानी आना रुके तो जाऊंगा ना, जब तक नदी बह रही है कैसा जाऊं। तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, उपहास करते हैं उसका, कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, नदी कभी रुकी है आज तक, अनंत काल से नदी बह रही है। वो कहता है कि मैंने तुम मनुष्यों से ये सीखा है, क्या कहता है कि तुमसे ही मैंने ये सीखा है, मृत्यु सामने खड़ा है, काल के मुंह में हो, फिर भी क्या कहते हो परमात्मा की खोज। ये तो भक्ति की कहानी है कि भगवान के लिए बाद में समय निकालेंगे, जब सब कुछ अनुकूल हो जाए तब, जब परिस्थितियां आना बंद हो जाए तब। हर रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा, राहगीर को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, रास्ता पीछे ही स्वतः ही पीछे चला जाएगा। कोई ये सोचे कि रास्ता आगे बढ़े या ठीक हो जाए सब कुछ फिर बाप को याद करूं, वो नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपूर्ण बनना है। जहां आज हम है, जिन व्यक्तियों के साथ है, जिस स्थान पर है, कुछ भी अच्छा नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं है, स्थान भी ठीक नहीं है, वहीं पर संपूर्ण बना जाता है। कमल कहाँ खिलता है? स्वच्छ जल में नहीं खिलता है। जहां गंदगी है वहीं से संपूर्ण बनते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां हो जाए इसका इंतजार नहीं करना है, वो समय की बलिहारी होगी। फिर जो परिस्थिति में हम है, जिन लोगों के बीच हम है, जिस स्थान पर हम है, वहीं रहकर, उन्हीं के बीच रहकर स्वयं को श्रेष्ठतम स्थिति पर स्थित कराना है। तो ये होगी हमारी बलिहारी। समय के लिए इंतजार नहीं करना है, समय की वेट नहीं करना है कि बीमारी ठीक हो जाए तो पुरुषार्थ करूं, थोड़ा बुखार तो कम हो जाए, कब से चल रहा है, थोड़ी खांसी ठीक हो जाए, थोड़ा पेट का दर्द, कमर दर्द ठीक हो जाए, थोड़ा सिर का दर्द कम हो जाए तब करूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, जहां है जैसे शारीरिक हालत में है उसी में पुरुषार्थ करना है। यहाँ के थोड़े लोग बदली हो जाए, थोड़ा ही समय बाकी है इसकी, वैसे भी ट्रांसफर तो होने ही वाली है, उसकी ट्रांसफर होगी और दूसरा आएगा। ये ठीक नहीं है सेंटर, चलो दूसरे जगह चलते हैं। यहाँ एक रावण है, वहां 10 रावण बैठे हैं। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको ही बदलना है। अव्यक्त महावाक्य है। ओम शांति। कल की मुरली कौन करेगा? कल की मुरली पर कमेंट्री जिसने अब तक नहीं किया है वो हाथ उठाएंगे, जिन्होंने अब तक नहीं किया है कोई कराएगा कल की मुरली पर कमेंट्री? हाँ निखिलेश भाई 31 दिसंबर न्यू ईयर की मुरली है 96 की, बहुत आराम किया है। नया साल नई बातें, तो कल की मुरली पर कमेंट्री के शब्द मुरली के ही होने चाहिए जितना हो सके उतना। ठीक है, ओम शांति। अरे नहीं।